हम देख रहे थे नबी सल्लम के हालात और निजी हालात, घर की जिंदगी, आप अपने इन क्लोज सर्किट में कैसे थे। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पेज 122 का आखिरी पैराग्राफ है। उम्र भर मामूल रहा कि रात के दूसरे हिस्से के अवाइल में बेदार होकर मिसवाक और वजू के बाद तहज्जुद अदा फरमाते। हम भी पूछे, हमारे घरों में यही रूटीन है? आधी रात के बाद उठकर हम अल्लाह से बातें शुरू हो जाते हैं, या कहीं ऑपोजिट तो नहीं हो गया कि हम तो उस वक्त सोते हैं, तब तो नींद की तैयारियां शुरू होती हैं, तो सोने जागने का वक्त बदला, उसी से रूटीन भी बदल गई। कुरान ठहर ठहर कर पढ़ते हुए बाज़ुकात इतना लंबा क़याम फरमाते कि कदम मुबारक सूज जाते, मुतवर्रम हो जाते, यानी उस पर वरम आ जाता। सहाबा ने इस मुशक्क़त पर अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने तो आपको गुफरान ख़ास से नवाजा है। सूरत फतह की शुरू की आयतें कद गफर लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिक व मा ताखर, उसकी तरफ इशारा है। फिर इस कदर आप जान क्यों घुलाते हैं? यानी आपको तो अल्लाह ने कह दिया कि आपको जन्नत मिलनी है और अल्लाह आपसे राजी है, तो फिर क्या ज़रूरत है? तो जवाब क्या था? फला अखू न आबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का एहसान शनास और शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? तो क्या पता चला कि हम इबादत जो करते हैं ना, ये अल्लाह के एहसानात का शुक्रिया भी होती है। घर और इसके साजो सामान के मुतालिक आपका नुक्ता नज़र क्या था? सुनना चाहते हैं इसको? आज हमारा बहुत बड़ा मसला घर है और घर की डेकोरेशन और घर का सेटअप। क्या आपका नुक्ता नज़र क्या था कि ज़िंदगी इस तरह गुजारी जाए जैसे मुसाफिर गुजारता है? अब तो सिर्फ शर्मिंदा ही होना है मैंने पढ़ पढ़ के। फरमाया कि मेरी मिसाल इस मुसाफिर की सी है जो थोड़ी देर के लिए साए में आराम करे फिर अपनी राह ले। मुराद यह है कि जो लोग आखरत को मुंतहा बनाए, मुंतहा क्या, एंड फाइनल डेस्टिनेशन, और दनीवी यानी दुनियावी जिंदगी को अदाए फर्ज या इम्तिहान के तौर पर गुजारे। नोट करें, यह दुनिया इम्तिहान, यहां बैठे नहीं रहना, थोड़े दिन में ये इम्तिहान खत्म हो जाएगा। असल क्या है? आखरत। और जिन्हें यहां किसी बड़े नस्बुलैन के लिए जिद्दोजहद करनी हो, नस्बुलैन कहते हैं गोल, फोकस्ड, जिस चीज के लिए आप हैं वो चीज, इनके लिए क्या मौका है कि आला दर्जे के मस्कन बनाएं और इनको साजो सामान से आरास्ता करें, फिर वो इसमें मगन रहकर लुत्फ उठाएं। चुनाचे आप और आपके साथियों ने ना आला दर्जे की इमारतें बनाई और ना इनमें असबाब जमा किए और ना इनकी जीनत और आराइश की। इनके घर बस बेहतरीन मुसाफिराना क्याम गाहें थी। मोटल्स, एक होता है होटल, एक होता है मोटल। मोटल जरा सा बड़ा होता है या घर की फीलिंग आती है। सराय, आप लोगों के घर ऐसे थे, इनमें गर्मी सर्दी से बचने का एहतमाम था, यानी गर्मी में आप एसी लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं सर्दियों में। जानवरों की मुदाखलत से बचाव का इंतज़ाम था, ये नहीं कि अब जो भी आना चाहे अंदर आ जाए। पर्दादारी यानी प्राइवेसी का बंदोबस्त था और हिफ्ज़ाने सेहत के ज़रूरी पहलू मलहूस थे, यानी गंदे घर नहीं थे आपके, बिखरे हुए नहीं थे, आपके घर में गंदगी को निकालने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के साथ अजवाज के लिए हुजरात यानी छोटे छोटे कमरे बनवा लिए थे, बजुस सफाई के और किसी तरह की आराइश ना थी, यानी साफ सुथरा घर था, बाकी डेकोरेशन नहीं थी। सफाई में ज़ौके नबूवत यहाँ तक था कि सहाबा को ताकीद फरमाई घरों के आंगन साफ रखो। अब इसको भी हम देखें, बाद सब हमारे घर साफ होते हैं लेकिन सामान इतना होता है कि गंदे लगते हैं, डिसऑर्गनाइज्ड, बिखरे हुए। वो कहते हैं ना कि दुआ बहार की मांगी के इतने गुल खिले कि कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को। बास जगह तो घर इतने भरे होते हैं लगता ही नहीं कि ये घर है या स्टोर है, इतनी चीजें होती हैं। साजो सामान में चंद बर्तन नहायत सादा किस्म के, मसलन एक लकड़ी का प्याला यानी बादिया था जिस पर लोहे के पत्थर लगे हुए थे और खाने पीने में इसका बकसरत इस्तेमाल होता था। खुराक का सामान जमा तो क्या होता, रोज का रोज भी काफी मिकदार में मुयस्सर ना होता। चलिए आंखें बंद करें, तसव्वुर में अपना फ्रिज देखें, अपनी पेंट्री देखें, अपने दाल दलिया चावल सालन रोटी रखने की जगहों को देखें। यहां से ही उम्मत की राहें बदल जाती हैं नबी की राहों से। बिस्तर चमड़े के गद्दे पर मुश्तमिल था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, हान की बनी हुई चारपाई रखते, टाट का बिस्तर भी इस्तेमाल में रहा यानी ज्यूट, जो दोहरा करके बिछा दिया जाता एक बार चोहरा करके बिछाया गया, यानी जरा नरम कर दिया, कंफर्टर कह लीजिए, तो सुबह दरियाफ्त फरमाया कि आज क्या खसूसियत थी कि मुझे गहरी नींद आई और तहज्जुद छूट गई। क्या पता चला, जितने नरम बिस्तर हुए उतनी नमाजें लेट हो गई। पहले लोग खुले आसमानों के नीचे सोते थे तो तहज्जुद से भी पहले आंख खुल जाती थी, फिर छत के नीचे आए तो तहज्जुद मुश्किल हुई, और जब पंखा लगा तो तहज्जुद गई, और एसी आया तो फजर भी गई। कैसे हम कुजी कुजी माहौल बना के उस वक्त सो रहे होते हैं जब आसमानों से अल्लाह ताला आवाज़ें लगाता है कि है कोई सेहत मांगने वाला उसको सेहत दूँ, और है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्शिश दूँ। मालूम होने पर हुक्म दिया कि बिस्तर को पहले ही हाल पर रहने दिया जाए, यानी घर का बिस्तर बहुत नरम नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म नहीं होना चाहिए घर सर्दी में, और बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए कमरा बहुत गर्मी में। ज़मीन पर चटाई बिछाकर भी लेटने का मामूल था। बाज़ औक़ात खरी चारपाई के निशानात बदन पर देख कर रुफ़क़ाए ख़ास, मसलन हज़रत उमर और अब्दुल्ला बिन मसूद रो दिए, जिस्म के ऊपर चटाई के निशान पड़ जाते थे, इतना सख्त बिस्तर होता था। ज़रा हज़रत उमर का चश्मे दीद नक्शा सामने लाइए। वाकई इला के मौके पर उन्होंने नबी सल्लम को इस आलम में देखा कि अब खरी चटाई पर लेटे हुए हैं और जिस्म पर निशान पड़ गए। इधर उधर देखा तो एक तरफ मुट्ठी भर जौ रखे हुए हैं, बारले सीट, एक कोने में किसी जानवर की खाल किल्ली से लटक रही है। ये मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब पूछा तो अर्ज़ की कि कैसरो किसरा, यानी उस दौर के सुपर पावर्स जो थे मुल्क, उनके हुक्मरानों का टाइटल है, का कैसरो किसरा तो ऐश करें और आपका ये हाल रहे। फरमाया उमर, क्या तुम इस पर खुश नहीं कि वो दुनिया ले जाएं और हमें आखिरत मिले। है कोई कमेंट? सिर्फ गहरी सोच, मुहासबा, तदब्बर। और याद रखिएगा, आज हम में से बहुत सारों का जो मसला है ना, वो ये है कि हमारी दुनिया बड़ी लग्जरियस है, कुजी, सुकून, यही घर हमारे लिए अल्लाह के रास्ते के पत्थर बन गए हैं। इन्हीं को संभालते, समेटते, ने धोते, पहनाते, अपडेट करते, अपग्रेड करते हम अल्लाह के पास चले जाते हैं, और हमारा वहाँ का मामला किधर है? आखिरत में भी तो ये सब चाहिए ना। हम तो इतने अच्छे अच्छे घरों के आदि हो गए, वहाँ जाके क्या बनेगा? यहाँ बैठकर आपने अपने आखरत के बिस्तरों का फिक्र करना है, आखरत के घरों का। यहाँ इतनी नेमतें, और वहाँ जाकर अगर अल्लाह ना करे एक दूर की झलकी भी आग की पड़ गई तो क्या बनेगा? अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। खाना पीना कैसा था, ये भी बहुत अहम इशू है, अक्लो शर्ब, क्योंकि जो खाते हैं, जो पीते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल होता है उसका बराह रास्त हमारी ज़िंदगी पर असर होता है। खाने पीने का ज़ौक बहुत नफीस था, इसको हाईलाइट करें, यानी दीन के नाम पे ये ना सोचें कि वो हीक देती हुई चिकनाई ही खाते थे और बेकारियात खाते थे, बहुत डिसेंट टेस्ट था। गोश्त से ख़ास रगबत थी, ज़्यादा तरजीह दस्त, ये जो दस्ती का गोश्त होता है, गर्दन और पीठ के गोश्त को देते। नीज पहलू की हड्डी पसंद थी, सरीद यानी गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े भिगोकर यह मखसूस अरबी खाना तैयार किया जाता था, तनावुल फरमाना मरगूब था। पसंदीदा चीज़ों में शहद, सिरका, खरबूजा, ककड़ी जिसको आप और मैं खीरा कहते हैं, क्यूकम्बर, लौकी यानी कद्दू, खिचड़ी, मक्खन वगैरह शामिल थी। दूध के साथ खजूर बेहतरीन मुकम्मल ग़िज़ा बनती है, इसका इस्तेमाल भी अच्छा लगता, और मक्खन लगा के खजूर खाना भी ज़ौक में शामिल था। खुरचन, वो जो नीचे चावलों की लगती है ना, खुरचन तहे देगी से भी उंस था। ककड़ी यानी खीरा नमक लगाकर और खरबूजा शक्कर लगाकर भी खाते थे। मरीजों की परहेजी ग़िज़ा के तौर पर हरीरा, वही जो एक कह लीजिए कि दलिया टाइप चीज़ है, इसको अच्छा समझते और तजवीज़ भी फरमाते। मीठा पकवान भी मरगूब ख़ास था। अच्छा, ये हम सबको पता है, मीठा नहीं बनाया, मीठा तो सुन्नत है, हैं? ये मीठी मीठी सुन्नतें हमें अच्छी लगती हैं। अक्सर जौ के सत्तू भी इस्तेमाल करते हैं। एक मरतबा बादाम के सत्तू पेश किए गए तो ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उमरा की गजा है। सत्तू जौ तो सस्ते होते हैं तो बादाम बड़े महंगे हैं, तो किसी ने बादाम घोट के ना, जैसे वो पाउडर, तो पानी में डाल के दिया, तो कहा नहीं ये तो अमीर लोग खाते हैं। कितने को बादाम होंगे हमारे घरों में और किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम। گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے، یعنی ایک گلاس پانی اور ڈال لو تاکہ دوسرے لوگوں سے شیئر کریں۔ پینے کی چیزوں میں نمبر ایک پر میٹھا پانی تھا، اور بطور خاص دور دراز کی مسافت سے منگوایا جاتا۔ دودھ پانی ملا، دودھ یعنی لسی، کچی لسی، اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ غیر نشہ دار نبیز، یہ جور کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں رات کو، تو پھر اس کو گھوٹ کے پی لیں تو اس کو نبیز کہتے ہیں، اور یہ بڑی صحت مند ہوتی ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، یعنی تین چار کھجوریں لیں، تین کھجوریں جو بھی ہیں، رات کو ایک گلاس پانی میں ڈپ کر دیں، جب صبح دیکھیں گے تو ایسے سوگی سی ہو چکی ہوگی نا، تو ہاتھ صاف کر کے اگر اسی کے ساتھ اس کو گٹلی نکال کے مسل دیں، اور بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں، دیٹس اٹ۔ برف کی ٹکڑیاں، تین کھجوریں رات کی بھیگی ہوئی پانی کے ایک گلاس میں، آپ پی کر دیکھیں، آپ کو اپنے اندر جو انرجی ملتی ہے اور اتنا مزے کا ہوتا ہے ٹھنڈا، میں نے خود بنایا ہوا ہے۔ اور یہ رات کو بس رکھے، زیادہ دیر نہیں اس کو بھگونا کہ دو تین دن پڑی رہے، کیونکہ پھر اس میں نشہ شامل ہونے کا ہوتا ہے، تو یہ گرمی والے موسم میں تو بہت ہی اکثیر ہوتا ہے اور طاقت والی چیز ہے، تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ غیر نشے دار نبیز بھی ذوق کے قریب تھی۔ مشکیزے یا پتھر کے برتن میں پانی ڈال کر کھجور بھگو دی جاتی، اور اسے متواتر دن بھر استعمال کرتے۔ آپ کہتے ہیں نا، کچی ایسے کھجور کھائیں سوکھی تو یہ گرم ہوتی ہے، لیکن پانی میں ڈپ کر کے کھائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جن کی طبیعت میں گرمی ہو ان کے لیے تو پھر یہ بہت ہی فائدے کی ہوتی ہے۔ مشکیزے یا پتھر کے برتن میں پانی ڈال کر کھجور بھگو دی جاتی، اور اسے متواتر دن بھر استعمال کرتے، لیکن وقت زیادہ ہونے پر چونکہ نشہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، لہٰذا پھکوا دیتے ہیں۔ یہ روایت ابو مالک اشعری کی ہے، یہ فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، چنانچہ بعد کے سلاطین نے نبیس کے نام سے منشیات کا استعمال کیا۔ یعنی آج دیکھ لیجئے، شراب کو کہیں کوئی بیئر کہتا ہے اور کہیں کچھ کہتا ہے، اٹس اوکے، یہ تو آبے جو ہے۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا، اس کو نوٹ کریں۔ اب یہ ہو گیا، گھر کے ہر بچے کے بڑے کے لیے الگ کھانا رکھتا ہے، ٹائم جو فرق ہے، حالانکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی، میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی شان فقر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دسترخوان پر چھوٹی چھوٹی پیالیوں اور تشتریوں میں کھانا رکھا جانا بھی خلاف مزاج تھا، یعنی ایک بڑے برتن میں سب مل کے کھائیں، یہ مراد ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا تھا، نہیں کھا سکتا ایک ایمان والا سونے چاندی والے برتنوں میں۔ کانچ، مٹی، تانبے اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے، دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، یعنی کھاتے ہوئے جوتا اترنا چاہیے۔ اور آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ آپ کے ہاضمے سے تعلق ہے، پاؤں گھٹ جاتے ہیں تو بعض نسیں اس طرح اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ یعنی بلڈ پریشر اوپر کی طرف جاتا ہے، تو اس طرح کھانے کے وقت میں جوتے اتارنے چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے کھا لیتے، اپنے سامنے کی طرف سے لیتے، برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے، یعنی پلیٹ کے ایسے نہیں کھاتے تھے، ایسے ایسے جیسے لوگ بعض دفعہ کھاتے، اپنے آگے سے تھوڑا تھوڑا کھاتے۔ کل بھی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو بالکل سامنے ہے، جو بہت قریب ہوتا ہے، فرنٹ پہ سے کھانا شروع کرتے۔ اور آپ کو کہتے ہیں کہ کھانے کے برتن کے بیچ میں برکت اترتی رہتی ہے، جب بیچ کا کھانا ہم پہلے کھا لیتے ہیں تو برکت اترنا رک جاتی ہے، یہ بھی ایک الگ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا، یعنی ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے۔ دو زانوں یا اکڑوں بیٹھتے، یعنی جیسے نیچے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ ایک ٹانگ سیدھی کر کے دوسری پہ بیٹھتے، اس سے آپ دیکھتے ہیں ویسے ہی پیٹ دب جاتا ہے۔ ایک ٹانگ سیدھی اور اس کو موڑ کے جیسے ہم یوں کر کے کھڑے تھے، اور دوسری ٹانگ بچھا کر ایسے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اور آج یہ دیکھیے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کم کھانے کا، کیونکہ اسے ہم کیسے بیٹھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ، ٹیبل اور پھولتا جاتا ہے اور پیٹ ہمارا ٹیبل تک جب تک نہیں پہنچتا، ہم کہتے ہیں پیٹ ہی نہیں بھرا، وہ غبارے کی طرح پیٹ پھولتا رہتا ہے، تبھی تو پھر موٹاپا پھٹ جاتا ہے نا۔ تو بیٹھ کے کھانے سے کم کھایا جاتا ہے، اور جب کھڑے ہوں گے تو خود بہت پیٹ میں جگہ بنے گی نا، تو وہ کھٹے ڈکار بھی نہیں آئیں گے اور ہاضمہ بھی درست رہے گا۔ ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے، ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ ہمارا حال کیا، جتنی دیر کھاتے رہتے ہیں، آج کوئی نمک تیز نہیں ہو گیا، آج کوئی دال چینی زیادہ نہیں، آج کوئی پیاز زیادہ نہیں، پھر بعض لوگ تو مسلسل تنقید بھی کرتے رہتے اور کھاتے ہوتے ہیں، اور عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب کوئی دوسری عورت پکائے، کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، نہ کھانا ہوتا چھوڑ دیتے، پوچھے کیا ہوا، کچھ نہیں کہنا، خود ہی اگلا سمجھ آئے گا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ज्यादा गर्म खाना ना खाते, कभी कभार छुरी से पका हुआ गोश्त काट काट कर भी खाया, मगर ये पुरतकल्लुफ तरीका मरगूब ना था, यानी पसंद नहीं था। खाना हमेशा तीन उंगलियों से लेते, ये तीन उंगलियां, एक मिडल की, एक शहादत की, ऐसे इन तीन उंगलियों से खाते थे, और इनको लुथड़ने ना देते, यानी पूरे उंगलियों पे गोश्त से वो घी सालन लगे, सिर्फ टिप्स से खाते थे। कभी कभार मेवा या फल खड़े होकर या चलते हुए भी खा लिया, दो फल इकट्ठे भी खाए, मसलन एक हाथ में खरबूजा लिया और दूसरे में खजूर, खजूर की गुठली उल्टे हाथ से फेंकते, दावत ज़रूर कबूल फरमाते, और अगर इत्तफाकन कोई दूसरा आदमी बातचीत करते हुए या किसी और सबब से साथ होता तो इसे ले तो जाते, मगर साहिब खाना से इसके लिए इजाज़त लेते। मेहमान को खाना खिलाते तो बार बार इसरार से कहते कि अच्छी तरह बेतकल्फी से खाओ। खाने की मजलिस से बतकाजाए मुरव्वत सबसे आखिर में उठते, यानी सब खा लेते फिर उठते, क्योंकि जब पहले उठ जाएं तो दूसरे जो खा रहे होते हैं उनको बुरा लगता है। कितने अच्छे मैनर्स थे। आप देखिए कि आज एटिकेट्स का नाम लेते हैं हम, अल्लाह के नबी को ये एटिकेट्स किसने सिखाए थे? किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन अल्लाह ताला आपको ये सब सिखाता था। दूसरे लोग अगर पहले फारिग हो जाते तो इनके साथ ही आप भी उठ जाते, फारिग होकर हाथ जरूर धोते, दुआ करते जिसमें अल्लाह की नेमतों के लिए अदाए शुक्र के कलेमात होते, नीज तलबे रिस्क फरमाते और साहिब खाना के लिए बरकत चाहते। खाने पीने की कोई चीज़ आती तो हाजिर दोस्तों को बाइसरार शरीक करते और गैर हाजिर दोस्तों का हिस्सा रख देते। फल वगैरह खाने की मजलिस में एक एक दाना लेने की तरबियत आपने दी, यानी कि इकट्ठा ढेर पकड़ लो, एक एक अंगूर खाओ ताकि सब भी खा रहे हैं। अब आप इकट्ठे ज़्यादा खाएंगे तो दूसरों के लिए नहीं बचेगा। पानी घट घट की आवाज़ निकाले बगैर पीते और बिलअमूम तीन बार प्याला मुंह से अलग करके सांस लेते, यानी एक सिप लिया छोड़ दिया, फिर दोबारा लिया, फिर तीसरी दफ़ा, यानी तीन दफ़ा लेते। ये नहीं कि अब लगाया है तो पीते ही जाएं, ऐसा नहीं करते थे, और बीच में सांस भी नहीं लेते थे। आज भी आपको पता है कि सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें मिक्स हो जाती है। मगर कभी कभी खड़े होकर भी पिया है। पीने की चीज़ मजलिस में आती तो बिलअमूम दाई जानिब से दौड़ चलाते, यानी ऐसे, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हम इधर से शुरू करेंगे, राइट हैंड वालों को पहल देते, और जहाँ एक दौर ख़त्म हो जाता दूसरा वहीं से शुरू करते। बड़ी उम्र के लोगों को तरजीह देते, मगर दाएं हाथ वालों का मुकर्रा हक, यानी इस्तेहकाक कहते हैं, हक साबित होना, इसकी बिना पर इनसे इजाज़त लेकर ही तरतीब तोड़ते। अहबाब को कोई चीज़ पिलाते तो ख़ुद सबसे आखिर में पीते और फरमाते कि साकी आखिर में पिया करता है, यानी पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है। खाने पीने की चीज़ों में फूंक मारना या इनको सूंघना नापसंद था। सांस में बू का होना चूँकि खिलाफ मिजाज था, इसलिए कच्ची प्याज और लहसुन वगैरह का इस्तेमाल हमेशा नापसंद रहा। खाने पीने की चीज़ों को ढांकने का हुक्म दिया। कोई नया खाना सामने आता तो खाने से पहले इसका नाम मालूम फरमाते, जहर खुरानी के वाक़े के बाद। आपको कहते हैं ना, एक यहूदी औरत ने आपको जहर देने की कोशिश की थी तो अल्लाह ताला ने आपको बता दिया और आप बच गए। जब कभी ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या किया, जहर खुरानी के वाक़े के बाद मामूल हो गया था कि अगर कोई अजनबी शख्स खाना खिलाता तो पहले एक आध लुकमा खुद इसे खिलाते। ये भी एक अच्छी टिप है ना, पहले आप खाएं। ज़ौक की इस नफासत के साथ दूसरी तरफ अक्सर औकात फ़क्र व फाका का आलम दरपेश रहा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। फरमाया, अकलु कमा याकुलु लब्द, मेरा खाना पीना ऐसे है जैसे अल्लाह के किसी बंदे का होना चाहिए। आप देखिए, गरम ठंडा इकट्ठा नहीं खाते थे, दो मीट इकट्ठे नहीं खाते थे। हमारा तो मेन्यू ही नहीं पूरा होता। अच्छा, बिरयानी चिकन की कर लेते हैं और कोरमा गोश्त का कर लेते हैं और कबाब फिश के कर लेते हैं, दो तीन गोश्त इकट्ठे नहीं खाते थे। और आज भी देखे कि ये सारे हिफ्जान सेहत के असूल मेडिकल के मुताबिक है। अल्लाह ताला की शांति कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीज़ें बता दी जो जिस्म के साथ ताल्लुक रखती थी, तो सिंपल लिविंग थे। नशिस्त व बर्खास्त कैसी थी, यानी उठते बैठते कैसे थे, कभी उकड़ों बैठते, कभी दोनों हाथ जानवों के गिर्द हल्का जन कर लेते, यानी बैठने का स्टाइल है। उकड़ों क्या, जैसे आप नीचे बैठते हैं पाँव के बल जिसको बैठना कहते हैं, कभी दोनों हाथ जानवों के गिर्द, जानवों क्या ये, ऐसे इस तरह से, जैसे बंदा थक जाता है ना कभी, तो इस तरह बैठे। कभी हाथों की बजाय कपड़ा चादर वगैरह लपेट लेते, बैठे हुए टेक लगाते तो बिलमूम उल्टे पैर पर, फिक्र या सोच के वक्त बैठे हुए ज़मीन को लकड़ी से कुरेदते, सोने के लिए सीधी करवट सोते और दाएं हाथ की हथेली पर दाहिना रुखसार रखते, ऐसे। अच्छा, बाज लोग चित लेटते हैं उल्टे, इसका भी सुन लीजिए। कभी चित भी लेटते और पांव पर पांव रखते, यानी सीधा तो लेट जाते थे कभी, लेकिन उल्टा नहीं लेटते थे, मगर सतर का एहतमाम रखते। सीधा लेटने में सतर खुलने का डर हो सकता है, चादर बांधी हो तो, और कपड़े उनके इस तरह के तो इतने सिले हुए नहीं होते थे, तो एहतमाम करते थे कि सतर ना खुले। पेट के बल ओंधा लेटना सख्त नापसंद था और इससे मना फरमाते। या मैं छोटे से एक इशारा करूं कि आजकल अक्सर बच्चों को मैंने छोटे होते हुए भी सोते उल्टा ही देखा है। ये दुरुस्त तरीका नहीं, ये जहन्नमियों का सोना है। वो सूरत मुल्क में ही आता है ना, वाइजा उल्कू फीहा, उल्टे लिटाए जाएंगे जहन्नुम में, तो पूछा जाएगा क्या कोई डराने वाला नहीं आया, तो कहेंगे आए तो थे लेकिन हम सुनते ही नहीं थे उनकी बात। तो ये जहन्नुम का लिटाना है, इस तरह बच्चों को शुरू से आदत डालिए। छोटा बहुत बच्चा आपका, उसको भी कभी उल्टा ना सुनसलाए, अगर सो जाए तो उसको सीधा कर दे। ऐसे तारीख घर में सोना पसंद ना था जिसमें चिराग ना जलाया गया हो, खुली छत पर जिसकी पर्दे की दीवार ना हो, सोना अच्छा ना समझते, क्योंकि रात को गिरने का डर हो सकता है ना, दीवारें नहीं होती थी छतों पे। वजू करके सोने की आदत थी, और सोते वक्त मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने के अलावा आखिरी तीन सूरतें, सूरत अखलास और मुवज्जतैन पढ़कर बदन पर दम कर लेते। सोते हुए हल्की आवाज से खराटे लेते, रात में कजाए हाजत के लिए उठते तो फारिग होने के बाद हाथ मुंह जरूर धो लेते। सोने के लिए एक तहबंद अलहदा था, कुर्ता उतार कर लटका देते थे। आपको एक इंसान का रूप मिल रहा है ना, आपको लग रहा है कि कोई जेन टाइप या कोई माफोकल फितरत या कोई नूरानी मखलूक है? इंसान थे, इंसानों में आला थे, आपके किरदार में और आपके अखलाक में बाकी चीजें बहुत खूबसूरत थी। बशरी हाजात यानी इंसान के साथ जो गंदगी और नहाना धोना लगा हुआ है, क्या आपके साथ भी थी? आइए इसको देखते हैं। ज़रूरत के लिए चूंकि इस दौर में घरों में बैतुल खला ना थे, इसलिए नबी सल्लम जंगल में जाते, अमूमन इतनी दूर तक चले जाते कि दो दो मील तक के नज़रों से ओझल हो जाते, यानी हया थी। उस दौर में लोग आमने सामने एक दूसरे के बैठ के फारिग हो जाते थे, लेकिन अल्लाह के नबी दूर जाकर बैठते थे। ऐसी नरम जमीन तलाश करते कि छींटे ना उड़े। मौके हाजत पर पहले बायां कदम रखते फिर दायां, बैठते हुए जमीन के बिल्कुल करीब होकर मुकामे सतर से कपड़ा खोलते। किसी टीले वगैरह की आड़ जरूर ले लेते, जरूरत के लिए हमेशा जूता पहनकर और सर ढककर निकलते। किबले की तरफ मुंह या पुश्त करने से इज्तनाब था। रफ़ा हाजत के वक्त अंगूठी अलग कर देते, क्योंकि उस पर मोहम्मदन रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। वाजिर है कि इस पर अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिखे हुए थे। आप दस्ते बिल इल्तिज़ाम बाएं हाथ से करते, यानी अपने आप को साफ करते वक्त बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड यूज़ करते, और वहां से हटते तो दायां पांव उठाते फिर बायां। गुसल के लिए पर्दा ज़रूरी करार दिया था। घर में नहाते तो कपड़े का पर्दा ताना जाता, कभी बारिश में नहाते तो तहबंद बांध लेते। छींक पस्त आवाज से लेते और हाथ या कपड़ा मुंह पर रख लेते। सफ़र कैसे थे आपके? सफ़र के लिए जुमेरात को रवानगी ज़्यादा पसंदीदा थी। आपके पास जब भी कभी चॉइस हो सफ़र करने की, तो जुमेरात चूज़ किया करें, यह सुन्नत है। सवारी को तेज़ चलाते, पड़ाव से सुबह के वक्त कूच करना मामूल था, यानी बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलते थे। कुरान में है इसकी कोई दलील? सूरत आले इमरान, ग़ज़वे उहद, वाइस गदाउत मिन अहलिका, जब अपने घर से सुबह सवेरे निकले। सफ़र यानी कैंप लाइफ में जो इज्तमाही काम दरपेश होते, इनमें ज़रूर हिस्सा लेते, यानी जाके कहीं खेमे लगाने या उखाड़ने हैं तो दूसरों का साथ देते। चुनाचे एक बार खाना तैयार करने की मुहिम थी, सारे साथियों ने काम तकसीम किए, आपने भी लकड़ियां चुनना अपने जिम्मे लिया। कहा गया कि आप तकलीफ ना करें, हम सब इस काम के लिए काफ़ी हैं। फरमाया कि मुझे इम्तियाज पसंद नहीं है, यानी कोई डिस्टिंग्विश असू, कोई अपने लिए एक प्रोटोकॉल नहीं पसंद करते थे। ये अलग बात है कि सहाबा आपको देते थे, लेकिन आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या आपको लगता था कि ये सब कुछ यानी मेरे लिए ना करें तो भी ठीक है। सफ़र में अपनी सवारी पर बारी बारी किसी न किसी प्यादा साथी को शरीक सफ़र करते। सफ़र से रात में वापस आना नापसंद था। क्यों भला? घर वालों को सरप्राइज़ देंगे। अचानक घर नहीं आते थे, पहले मस्जिद जाते थे। आते तो सीधे घर जाने की बजाय मस्जिद में जाकर नफिल अदा करते, घर में इत्तला हो जाने के बाद इत्मीनान से जाते। देखिए ज़रा कितने सेंसिटिव थे अल्लाह के नबी। आपने फरमाया, मर्दों को हुक्म दिया कि सफ़र से वापस आओ। अब उस वक्त ये सेल फोन और ये मुसीबतें तो नहीं थी कि मिनट मिनट अब किधर हैं और अब गली मुड़ गए हैं, अब चल गए, अब अगले पे आ गए, अब अगला मोड़ ले रहा हूँ, अब राउंड अबाउट पे चलो, अब तुम मेरे साथ ही रहो ताकि गाड़ी से तुम्हें पता लग जाए मैं किधर आ गया हूँ। बेगम तो बेगम को खुशी क्यों आनी है मियाँ को देखकर? ऐसा भी नहीं था, लेकिन ये भी नहीं करते थे कि 2 साल बाद घर आ रहा है मियाँ दूसरे मुल्क से और मुंह खोलो और दरवाजा खोलो तो बाहर खड़े हैं जी, आप किधर से आगे सरप्राइज दी है, नहीं करते थे। आप कहते थे बच्चों को भेजकर घर में मैसेज दिलवाते थे, खास तौर पे फरमाया कि शादीशुदा मर्द जब घर आए तो पहले से बीवी को बताया जाए ताकि घर वाले अपने आप को साफ सुथरे कर लें। कौन इतना इहतमाम करता है? ये सारी चीज़ें अच्छे खूबसूरत सेंसिटिव लोगों ही की बात होती है। और याद रखिए कि जो अच्छा होता है ना वो हर मामले में अच्छा होता है, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, चले यहाँ रुकेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।